दौला पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर छ ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्चायाणं नमो लोए सौवसाहूणं जय उधरसेन नाहो जेन महाकम्म पयणि पाहुड सेलो बुद्धि सिरेणुद्धरियो समप्पियो भुवदंतस। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें ये द्वितीय खंड अपना चल रहा है, खुद्दाबंध इसका नाम है। और अभी हम ये सातवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 45 पर आ गए, 45। कल हमने एक गाथा पढ़ी थी, फिर दोबारा उसको पढ़ेंगे, उसका अर्थ भी देखेंगे। तो यहाँ गाथा 7 नंबर 45 पृष्ठ पर, संखातः पत्थारो परियठन नठतः समुद्दिठम एदे पंचवी अप्पा ठाण समुक्कितनम नेया। संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुद्दिष्ट, इन पांच विकल्पों का स्थान समुत्कीर्तन जानना चाहिए। कल हमने ये प्रमाद के जो चर्चा है जीवकांड में, उसके आधार से इसकी चर्चा की थी। संख्या ने उसका नंबर कौन सा है उसको संख्या कहेंगे। प्रस्तार यानी जो पिंड प्रकृतियां हैं उसको किस प्रकार से लिखना है उसको प्रस्तार कहेंगे। फिर उसमें से क्रम से एक एक जो पलटना होता है उसको परिवर्तन कहते हैं। नष्ट का अर्थ हमने देखा था कि यानी उसको नष्ट का अर्थ अपने संख्या बताई जाती है और उसका आलाप बताना, आलाप यानी वो कथन करना है उसमें कौन क्या 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 बातें होती है। और समुद्दिष्ट का अर्थ होता है वो आलाप बताते हैं और आपको उसकी संख्या निकालनी है, वो कितने नंबर का है वो निकालना है। ये हमने पांच नाम अलग अलग देखे थे। अब आगे पढ़ेंगे हम। कल हमने उसका ये टेबल गूढ़ यंत्र कैसे बनाना वो बात छोड़ दी थी। ये गूढ़ यंत्र बनाने का तरीका क्या है, तो जो अंत में हम जो जिसको गिनते हैं उसका ऊपर पहला कॉलम लिखना पिंड प्रकृति। जैसे हमारे पास विकथ आचार, कषाय चार, इंद्रिय पांच, ऊपर स्नेह और निद्रा एक एक ही है, निद्रा और स्नेह, तो उसको एक एक में लिखने की जरूरत नहीं है, उसको तो गिन लेना। ये जो है वो पांच इंद्रियों को पांच कोठे में लिखना और क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 ये नाम देना, यानी उसकी संख्या देना। उसके नीचे वाला कषाय वाला कॉलम है तो कषाय क्रोध मान माया लोभ लिखना, पहले में 0 लिखना। दूसरे कॉलम में जो ऊपर का लास्ट वाला है 5 वो इधर लिखना और आगे 5-5 से बढ़ते हुए ही लिखना, यानी 5, 10 और 15 हो जाते। फिर विकथा का कॉलम लिखेंगे हम। विकथा में वो स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा और नेपाल कथा, तो उसमें भी पहले कॉलम में 0 लिखना, दूसरे में ऊपर का जो लास्ट 5 और 15 20 होते हैं तो यहाँ 20 लिखना और 20-20 से बढ़ते हुए ही लिखना, तो 20, 40 और 60। इस तरह से तैयार होने के पश्चात हमें कोई भी नंबर बताएंगे, 50 नंबर का कौन सा है, तो 50 इनकी टोटल 50 आनी चाहिए। जैसे यहाँ 4 लिया, यहाँ 5 लिया, यहाँ 5 लिया, ये 50 हो जाते हैं। तो कैसा कहेंगे हम, स्नेहवान निद्रालु श्रोत्रिंद्रिय के वशीभूत, फिर मान कषाय वाला, और ये राष्ट्र कथा वाला राष्ट्र कथा लापी, इस तरह उसका निकालने के तरीका है। वो बात हम फिर दोबारा पढ़ेंगे इसमें से। अब 45 पेज पर 8 नंबर का श्लोक वो गाथा हम पढ़ने जा रहे हैं। सौवे विपूव भंगा उवरी भंगेशु एकमेकेशु मेलंतित्य कमसो गुणिदे उपज्जदे संखा। सभी पूर्ववर्ती भंग उत्तरवर्ती प्रत्येक भंग में मिलाए जाते हैं, अतएव उन भंगों को क्रमशः गुणित करने पर सब भंगों की संख्या उत्पन्न होती है। हमने सभी की संख्या जो अभी हमने प्रमाद के बारे में अगर देखना था तो चार विकथा है, चार कषाय और पांच इंद्रिय विषय, और आगे वाले एक एक है, तो चार गुणा पांच 80 भेद हो जाते हैं, टोटल संख्या 80 हो जाती है। अब आगे 9 नंबर। पढ़मं पयडिपमानं कमेण निखिविये वरिमानं च पिंडं पड़िएकेके निखेते हो दीपत्थारो। ये प्रस्थान कैसा होता है उसकी बात कर रहे हैं। पहले प्रकृति प्रमाण को क्रम से रखकर, अर्थात उसकी एक एक प्रकृति अलग अलग रखकर, यहाँ प्रकृतियों की बात है ना, इसलिए प्रकृति की बात करेंगे। वहां तो हमारे प्रमाद के भेद थे, इसलिए वहां हमने प्रमाद पर आपको समझाने के लिए उसका नाम लिया था। यहाँ तो कौन सी प्रकृतियां बनती है उसकी बात है। तो कहते कि यानी यहाँ तो हमने अलग अलग जो ऑप्शनल देखी थी, ये या वो, कहीं कहीं छह संस्थान है, छह सहनन है, तो वो पिंड प्रकृति है, तो उसमें एक एक को जुदी जुदी लिखेंगे। यही कह रहे प्रस्तार में क्या करना है कि प्रकृति प्रमाण को क्रम से रखकर, अर्थात उसकी एक एक प्रकृति अलग अलग रखकर, एक एक के ऊपर उपरिम प्रकृतियों के पिंड प्रमाण को रखने पर प्रस्तार होता है। जैसे हमने आपको यहाँ विकथा कषाय में समझाया वैसा ही है, एक के बाद एक दूसरा ऐसा लिखना, इसको प्रथम प्रस्तार कहेंगे। वो प्रथम क्या है, द्वितीय क्या, वो क्योंकि हम जैसे हम कहें ना आदिनाथ से महावीर तक गिनना है तो हम 1, 2, 3, 4, 24 लिखेंगे, उल्टा गिनना है तो हम 24 को पहला नंबर कहेंगे। इस तरह से प्रथम प्रस्तार और द्वितीय प्रस्तार हम कहाँ से शुरू करते हैं, ये हम प्रमाद के बारे में स्नेहवान निद्रालु से शुरुआत करते हैं कि विकथा से शुरुआत करते हैं, उस पर उसका नंबरिंग भी जुदा जुदा होगा, सेम नंबर नहीं आएगा, तो उसको कहेंगे प्रथम प्रस्तार और द्वितीय प्रस्तार। ये बाद में ये प्रथम प्रस्तार समझाएंगे क्या है। अब ये 10 नंबर में द्वितीय प्रस्तार बता रहे, देखो। निखत विदियमेत्तम पढ़मं तस्वरी विदियमेकेकम पिंडं पड़ि निखिते एवं शेषा विकायो वा। दूसरे प्रकृति पिंड का जितना प्रमाण है उतने बार प्रथम पिंड को रखकर उसके ऊपर द्वितीय पिंड को एक एक करके रखना चाहिए। हमने काल आपको बताया था विकथा का विरलन करो, एक एक लिखो, और वो द्वितीय पिंड जो है कषाय चार है, हर एक के ऊपर चार चार लिखो, कल समझाया था ना, वही बात कह रहे हैं यहाँ पर। ये 10 नंबर का फिर पढ़ते देखो। दूसरे प्रकृति पिंड का जितना प्रमाण है, हमने हमारे दूसरा प्रकृति पिंड था चार का कषाय वाला, तो उतने बार प्रथम पिंड को रखकर उसके ऊपर द्वितीय पिंड को एक एक करके रखना चाहिए। इस निक्षेप के योग को प्रथम समझ और अगले प्रकृति पिंड को द्वितीय समझ, तत्प्रमाण इस नए प्रथम निक्षेप को रखकर जोड़ना चाहिए। आगे भी शेष प्रकृति पिंडों को इसी प्रक्रिया से रखना चाहिए। किस तरह से रखना और उसको कैसा लिखना, पिंड प्रकृतियों के एक एक के ऊपर लिखना और उसकी जितनी उत्तर प्रकृतियां है उसको उसके सामने लिखना। 11 नंबर। पढ़मखो अंतगहो आदिगदे संकमेदि विधियखो दोन्नि विगंतूणंतम आदिगदे संकमेदि तदियखो। प्रथम अक्षर अर्थात प्रकृति विशेष जब अंत तक पहुंचकर पुनः आदि स्थान पर आता है तब दूसरा प्रकृति स्थान भी संक्रमण कर जाता है। जैसे हमने पहले आपको बताया था कि एक विकथा कायम रखी, एक क्रोध कषाय कायम रखा, और वहां जो स्पर्शन के बाद रसना इंद्रिय फिर वो अंत तक पहुंचा, श्रोत्र तक, यानी स्त्री कथा और क्रोध को कायम रखते हुए जब इंद्रिय वाला जो अक्ष जिसको कहेंगे वो हम स्पर्श से फिर रस पर ले गए, फिर गंध पर ले गए, फिर चक्षु पर, इस तरह से अंत तक पहुंचा, फिर वापस स्पर्श पर आएगा, तब जाके वो कषाय वाला है वो दूसरे में चला जाएगा, मान पर जाएगा, फिर मान पर भी स्पर्श रस गंध तो चक्षु की और इसकी बात कर्ण की बात आती, कर्ण इंद्रिय की। तब तृतीय अक्ष का भी संक्रमण होता है, यानी जैसे क्रोध पर पांचों लगाए, फिर मान पर पांचों लगाए, माया पर पांचों लगाए, लोभ पर पांचों, तब जाके अभी नीचे का विकथा वाला उसमें वो अक्ष का परिवर्तन होगा, तब स्त्री कथा से लेकर हम आगे वाले भक्त कथा पर चले जाएंगे, फिर उसमें भी क्रोध कायम रखना और स्पर्श रस रसना घ्राण चक्षु वगैरह लगाना। अब 46 प्रश्न पर आते, 46 यानी पद्धति प्रस्तार, यानी वो लिखना ये सब और फिर अक्ष परिवर्तन ने एक एक को पलटाना। 12 नंबर पढ़ते हैं यहाँ पर, सगमाणेन विहत्ते शेषम लक्षित पक्षिवे रूवम लक्षिज्जन्ते शुद्धे एवं सौवत्थ का यौवम। जितने वा उदय स्थान जानना अभिष्ट हो, इसको कहेंगे नष्ट लाने का विधान, हमें उसका नंबर कौन से नंबर वाला है वो निकालना है, उसी स्थान संख्या को पिंडमान से विभक्त करें, जो शेष रहे उसे अक्ष स्थान समझे। हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से समझेंगे। पुनः लब्ध में एक अंक मिलाकर दूसरे पिंडमान का भाग देवे और शेष को अक्ष स्थान समझे, जहां भाग देने से कुछ न बचे वहां अंतिम अक्ष स्थान समझे, और फिर लब्ध में एक अंक न मिलावे। इस प्रकार समस्त पिंडों द्वारा विभाजन क्रिया करने से यहां उद्दिष्ट स्थान लिखा है परंतु वो नष्ट आता है, क्योंकि नीचे बाद में 13वें में उद्दिष्ट निकालने की बात है जिसको हम समुद्दिष्ट कहते हैं, ये उद्दिष्ट लिखा है ना, उसके बदले वहां नष्ट निकल आता है। अब इसके समझने के लिए मैं फिर जीव कांड से, क्योंकि गणित की बात बताई है और उसको यहाँ समझाया तो नहीं है, फिर भी हम इसको समझेंगे यहां से। देखो यानी कोई जितने वा प्रमाद भंग पूछे, जितने वा उदय स्थान जानना बताया ना, अभी हम जितने वा प्रमाद की बात करेंगे, वो उदय स्थान के बाद में करेंगे, वो तो प्रकृतियों पर घटाना है, हमें उनकी पद्धति समझना है जो हमें मालूम है, इसलिए इसकी बात पहले लेते हैं। उस प्रमाद भंग के आलाप की खबर नहीं है, यानी वो कौन सा वाला है वो मालूम नहीं है, क्रोध वाला है कि किसी इंद्रिय वाला है वो मालूम नहीं है, तो हमें केवल उसका नंबर मालूम है, कौन से नंबर का है, 50वां है जैसे अभी आपने आपको पूछा था, तो वहां उसको नष्ट कहते हैं। ये नष्ट लाने की विधि, नष्ट लाने ने हमको संख्या उसका नंबर मालूम है, क्रमांक मालूम है, और हमको उसका आलाप यानी कौन सा वाला भेद है उसको निकालना है, उसको जानने का ये उपाय बता रहे जो अभी हमने ये 12 नंबर के श्लोक में पढ़ा है। किसी ने जितने वा प्रमाद पूछा होगा उसको अपने प्रमाद पिंड का भाग देने पर जो अवशेष रहे सो अक्षर स्थान जानना, यह यही बात हमने अभी देखे। स्थान संख्या को पिंडमान से विभक्त करे यानी भाग दे, और जो शेष रहे उसको अक्षर स्थान समझे। पुनः जितने पाए हो उसमें एक जोड़, लब्ध में एक अंक मिलाकर। मैं एक वाक्य में जीवकांड में से पढ़ रही हूँ, एक यहाँ से धौला में से पढ़ रही हूँ। यहाँ मिला ना, लब्ध में एक अंक मिलाकर। ये क्या करना वो उदाहरण सहित देखेंगे हम फिर। तो वो लब्ध है उसमें एक जोड़कर उसको द्वितीय प्रमाद पिंड का भाग देना, वहां भी ऐसा ही जानना, यानी उसको अक्षर स्थान समझे, यानी वहां का जो भेद होगा उसको वहां ले लेना। इतना विशेष जानना, यदि जहां भाग देने पर राशि शुद्ध हो जाए यानी पूरा भाग जाता है उसमें कुछ नहीं बचता, वहां उस प्रमाद का अंतिम भेद ग्रहण करना, तब तो वो अंतिम वाला समझना। तथा वहां जो लब्ध राशि हो उसमें एक न जोड़ना। ऐसे करते हुए जहां अंत हो वहां एक न जोड़ना वह कहते हैं। अभी उसने अभी डायरेक्ट मैं आपको विशेषार जो मैंने उसमें उदाहरण देके समझाया उसको समझाती हूँ। यानी संख्या बताई हमको नष्ट लाना है, और द्वितीय प्रस्तार अपेक्षा ये कथन कर रहे हैं। तो कहते 15 आलाप, आपको 15वां संख्या बताई है, अभी वो कौन सा भेद है वो आपको निकालना है। हमने आपको जो टेबल बताया था उसमें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, परंतु ये टेबल नहीं मालूम उसके लिए वो दूसरी पद्धति बता रहे हैं। इसमें से 15 नंबर का कौन सा होगा आप समझ सकते हो? देखो ये जो जीरो लेना पड़ेगा क्योंकि आगे 20 होते हैं। हाँ फिर ये अगर जीरो लेते हैं ना तो इसमें से 10 लेना पड़ेगा, और ये 5, ये एक अगर लेते हैं तो यहाँ 14 किधर है? सबके मिलकर 15 ही होना चाहिए और उसमें एक ही आएगा, समझ में आता? हाँ अभी यहाँ देखते हैं। अभी यहाँ उन्होंने दूसरे आलाप पद्धति से बताया, यानी इनको पहले यहाँ उल्टा कर गया, उसकी अपेक्षा यहाँ बताई है। पहले प्रस्तर की अपेक्षा नहीं लिखे हम, दूसरे प्रस्तर की अपेक्षा देखते हैं क्या करना है। तो पहले में पहले 15 संख्या बताई, दूसरी अपेक्षा बात करेंगे तो उसको हम, क्योंकि दूसरे प्रस्तर की अपेक्षा उदाहरण बनाया। दूसरा प्रस्तर का अर्थ समझना, विकथा को ऊपर रखना, विकथा पर, यानी वो स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा और अवनिपाल कथा, उसमें कैसे नाम देंगे? 1, 2, 3, 4। फिर कषाय, वो तो बीच वाले ही है ना। कषाय क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। अभी इसका नंबरिंग कौन बताएंगे? हाँ क्रोध को 0, मान को ये 4, 4, 8, 8, 4, 12। अभी यहाँ इंद्रिय लिखना, स्पर्शन इंद्रिय को 0, रसना इंद्रिय को 12, 16, ग्रहण को 32, चक्षु को 32 और 16। अच्छा, मिलन वो 16-16 से बढ़ा ना, 16 के 16 से 48 और श्रोत्र को 48 और 16 64। अभी 15 नंबर बताओ इसमें से। बारह और तीन, समझ में ना? राष्ट्र कथा लापी, लोभी, स्पर्शन इंद्रिय का विषयभूत, फिर निद्रा स्नेह वाला, उसके आगे के बता देना। ये द्वितीय प्रस्तार है, ये हमने देखा था वो प्रथम प्रस्तार था। अभी इसके हमको 15 नंबर का निकालना है। ये तो हमें गूढ़ यंत्र बनाते तो आसान है, अभी हमको डायरेक्ट निकालना है तो क्या करना, उन्होंने पद्धति क्या बताई जो अभी आपने 12 नंबर के अर्थ में देखी। देखो निकालो, फिर आपके पुस्तक के आधार से मैं सिखाऊंगी। हमें वो 15 नंबर जानना, वो द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा निकालना है, तो वो उसको पिंडमान से विभक्त करें। पिंडमान ने ऊपर की विकथा है, चार होती है, 15 को 4 से भाग देना। समझ में आती है बात? विकथाएं 4 है, 15 को 4 से भाग दिया, कितने रह गए? 4 × 3 = 12 और 3 रह गए, लब्ध 3 आया और रह गए 3। 3 रह गए तो तीसरा भेद राष्ट्र कथा लाती। अब लब्ध भी 3 आया, 3 में 1 मिलाना, 4 हो गए, और 4 को कषाय 4 से भाग देना। हाँ तो पूरा चला जाता है भाग, 0 आया। दिया था ना 15 मूल भेद है। देखो मूल भेद हमने, आप पहले सुन लो क्या क्या करना है। हमें क्रम से विकथा से भाग देंगे, कषाय की संख्या से भाग देंगे, और फिर वो इंद्रियों से भाग देंगे। पहले में पहले 15 को भाग दिया 4 से, 4 × 3 = 12, ये जो आया ये लब्ध है तो निक्स्ट उसके लिए है। 3 आया तो तीसरा नंबर का विकथा है, तीसरे नंबर विकथा कौन सी? राष्ट्र कथा वाली। अब ये जो 3 है ये तो पूरा भाग नहीं दिया था, इसलिए इसमें 1 मिलाना, 3 + 1 = 4 हो जाते हैं। अब इसको कषाय से भाग देना, 4 × 4, यहाँ 0 आए, 0 आए उसका अर्थ लास्ट वाला भेद लेना, कौन सा? लोभ। और फिर यहाँ 1 आया, अभी जो 1 आया है वो 1 है तो वो पहला है, उसमें कुछ नहीं मिलाना, तो 1 यहाँ ले लेना पहला। फिर से मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, देखो उदाहरण जो है, 15 को 4 से विकथा से भाग दिया तो 3 लब्ध राशि आई और 3 अवशेष राशि आई, तो विकथा का तीसरा भेद जो अवशेष राशि है वो उस पिंड वाला तीसरा भेद लिया। लब्ध राशि 3 आई थी उसमें 1 मिलाना तो 4 आ गए, और कषाय भी 4 है, 4 को 4 से भाग दिया तो निशेष रही, 0 आई, 0 का अर्थ लास्ट वाला भेद लेना। तो 0 रहा, इसलिए कषाय का अंतिम भेद लोभ लेना, और लब्ध राशि में 1 नहीं मिलाना क्योंकि 0 आया था, तो लब्ध राशि 1। तो वहां तो 5 इंद्रिय वाला है, तो 1 ही ले, तो पहला ही, क्योंकि 1 को 5 से अगर भाग देते हैं तो वहां तो 0 आ जाएंगे। समझ में आते हैं बात? वहां 1 का भाग नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे, यानी उसका पहला भेद ग्रहण करना। यानी अभी वो कैसे कहेंगे हम? राष्ट्र कथा लापी, लोभी, स्पर्शन इंद्रिय का विषयभूत, निद्रालु और स्नेहवान, ये द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा बात की इसलिए बताए। अगर हमने जो प्रथम प्रस्तार देखा था उसमें यही, अगर आप बता दो प्रथम प्रस्तार का अपेक्षा हमने ऊपर किसको लिखा था? इंद्रियों को लिखा था, वो 5 होती है, फिर कषाय 4 होती है, और फिर यहाँ विकथा 4 होती है, वही 15 वाली बात करेंगे। तो पहले 15 को 5 से भाग देंगे तो 3 आया, यहाँ 0 आया, यानी लास्ट वाला श्रोत्र इंद्रिय का विषयभूत हो जाएगा। फिर 3 रह गए, ये 20 में नहीं मिलाना, तो 3 को 4 से भाग देंगे, 1 का भाग नहीं जाता है, 0 का जाता है, तो यहाँ 3 ही रह गए, तो यहाँ 0 है ने पहला वाला, यहाँ 0 आएगा तो यहाँ तो देखो देखो यहाँ 15 का भाग, यहाँ निशेष भाग गया, तो लास्ट वाला लेना। हाँ नहीं नहीं इंद्रिय से भाग दिया ना हमने, अभी दूसरा प्रस्तर है, प्रस्तर बदल दिया हमने, वही संख्या लेते हुए हमने प्रस्तर बदल दिया, तो लास्ट श्रोत्र इंद्रिय वाला आया, यहाँ जीरो है नहीं, लास्ट वाला लेना श्रोत्र इंद्रिय वाला। अब यहाँ तीन रह गए, चार का भाग जीरो जाता है, फिर हम पॉइंट करते हैं ना किसी को भाग देना है, तो जीरो यहाँ आया है और यहाँ लब्ध यानी यहाँ तीन रह गए, समझ में आते हैं ना, चार शून्य शून्य उसमें से माने कि यहाँ तीन रह गए, तो ये कौन सा लेना, तीसरा लेना, अभी तीसरा कषाय में से तीसरा लेना, माया लेना। यहाँ जीरो आया तो ये लास्ट लिया, जहाँ निशेष भाग देता है वहाँ जीरो लेना, वहाँ लास्ट वाला लेना। अब जहाँ ये लब्ध राशि जीरो आती वहाँ पहला लेना, यहाँ तीन आए थे, तीसरा लिया था। हाँ मैं जीव कांड पेज नंबर 93 से पढ़ रही हूँ, प्रमाद के विषय की बात चल रही थी ना, कल मैंने जीव कांड में से पढ़ा था ना, वहीं से देख, जीव कांड पहली पुस्तक पेज नंबर 93, वो पहली बात आपको समझ में आई थी ना, ये बात भूल जाओ। अभी देखो फिर से यहाँ से पढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं, नष्ट लाना है, समझ में आई ना बात। और ये हमने आपको प्रमाद पर द्वितीय प्रस्तर की अपेक्षा बताया था, यहाँ तो प्रकृतियों पर घटित करके दिखाने वाले हैं, अभी आपको गणित कैसे, गणित के द्वारा कैसे निकालना वो बात बताई, यहाँ तक समझ में आई बात। देखो फिर से पढ़ती है, हाँ 46 पेज है धवला का, जो हमने 12 का अर्थ देखा था, फिर को उसको दोबारा देख रहे, जितने वहां उदय स्थान जानना अभिष्ट हो, जितने वहां हमको उसका क्रमांक बताया है, जैसे हमने प्रमाद में 15वां देखा था, अभी यहाँ प्रकृतियों की बात है, उदय स्थान का अर्थ है, देखो हमने जो भंग देखे थे उदय स्थान में, वो कितने वा भंग है उसकी बात है, वो लेना है, भंग लेना है, जैसे हमने अभी देखे थे ना उदय उद्योग से सहित वाले रहित वाले, टोटल 18 भंग बताए थे एक केंद्रीय वगैरह में, तो उसमें कितना नंबर का है वो कैसे निकालना उसकी बात है। यहाँ प्रकृतियों की बात करेंगे, यानी वो स्थान एक है, ये वो उदय स्थान वाली बात अलग है, उदय स्थान एक पर्टिकुलर बताया, उसमें भंग कितने बताएंगे हम, तो अभी हमने वो 289 कुछ भंग देखे थे ना उसमें, तो उसका नंबर कैसे निकालना, क्योंकि वहाँ 6 संस्थान है, 6 सहनन है, फिर पर्याप्त, ये जो अलग अलग जो बातें हैं उसमें हमको वो संख्या निकालनी है। तो कहते उसी स्थान संख्या को पिंडमान से विभक्त करे, पिंडमान प्रकृतियों में क्या लेना है, वो पर्याप्त या अपर्याप्त, वो पिंडमान होगा, हाँ वो पिंड प्रकृतियाँ, ये संस्थान और सहनन के जो अभी गति तो फिक्स थी हमारी तिर्यंच गति, और उसमें संस्थान सहनन वगैरह उसको पिंड प्रकृतियाँ कहेंगे, वो पिंडमान से भाग देना, जो शेष रहे उसे अक्ष स्थान समझे, यानी उस पर्टिकुलर जो पिंड स्थान में से जो शेष रहे ने उसके नंबर का वो प्रकृति वहां लेना। पुनः लब्ध में एक अंक मिलाकर, लब्ध ने भी जो मिल गया है भाग देने पर जो संख्या आई लब्ध राशि, उसमें एक अंक मिलाकर दूसरे पिंडमान का भाग देवे, जैसे अभी आपको हमने पहले विकथा से भाग दिया था, फिर कषाय से दिया था, इस तरह से, और शेष को अक्ष स्थान समझे, यानी उसमें से वो नंबर ले लेना, जो शेष रहता है ना, बाकी जो नीचे रहती है भागाकार करने, एक होती लब्ध राशि और एक होती शेष राशि, तो उस अक्ष में से उसको शेष को ले लेना वहां पर, जहां भाग देने से कुछ न बचे, यानी तो निशेष भाग जाता है, वहां अंतिम अक्ष स्थान समझे, लास्ट वाला। जैसे हाँ, जैसे पंद्रह को पांच से भाग दिया, पत्री पंद्रह जीरो आया, तो लास्ट वाला समझेंगे, ये उसका अर्थ है। और फिर लब्ध में एक न मिलावे, जहां निशेष भाग जाता है उसके लब्ध में मिलाना नहीं कुछ, जहां कुछ बाकी शेष रहता है तो उस नंबर का अक्ष लेना है और लब्ध में एक मिलाना है, ये उनकी पद्धति है। इस प्रकार समस्त पिंडों द्वारा विभाजन क्रिया करने से नष्ट निकल आता है, ये उद्दिष्ट स्थान नहीं है, नष्ट निकल आता है। स्थान भी लिखने की जरूरत नहीं, उद्दिष्ट आपके उसमें क्या लिखा है, नष्ट। हाँ, हमने लिखवा था नष्ट लाने का विधान, और हमने वही अभी जीवकांड में से पढ़ के भी सुनाया आपको, क्योंकि नेक्स्ट 13 नंबर के जो श्लोक है उसमें उद्दिष्ट निकल आता है लिखा है, यानी ये नष्ट की बात है। अब 13 नंबर को पढ़ेंगे। अब उद्दिष्ट निकालना है। संठा विदूण रूवम उवरी दोसं गुणित सगमाणे अवणे चोन किदयम कुज्जा पड़मंतियम जाव। एक अंक को स्थापित करके आगे के पिंड का जो प्रमाण हो उससे गुणा करे और लब्ध में से अनंकित को घटा दे, ऐसा प्रथम पिंड के अंत तक करता जावे, इस प्रकार उद्दिष्ट निकल आता है। अभी इसकी प्रक्रिया बताती हूँ मैं। अभी उसमें क्या क्या उद्दिष्ट निकालना है ना, मैंने कौन सा 93 बताया था ना, वहां तो आलाप बताते हैं। अभी हमने वो 15वां आपको जो बताया था, मैंने आपको जो उदाहरण बताया था ना, वो तो द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा, ये तो हमने यहाँ से देखा था द्वितीय प्रस्तार, पहले प्रस्तार की अपेक्षा यही उदाहरण देखना था। तो अभी हमको इंद्रिय की बात उससे पहले भाग देंगे, तो 15 को हमने भाग दिया था 5 से, तो 3 आया था और यहाँ 0 आया था, तो 0 आया था उसका अर्थ क्या हुआ, श्रोत्र इंद्रिय का वशीभूत। उसके बाद यहाँ 3 है, अभी उसमें एक नहीं मिलाना था, तो 3 को 4 से भाग देंगे, तो 0 आया, 4 0 0 3 बच गए, तो ये 3 बच गए, तो ये तीसरा नंबर लेना, यानी माया भी लेना, क्रोध मान माया लोभ में से तीसरा दे माया का लेना। अभी यहां तो 0 है, तो 0 में यहाँ तो कुछ राशि आती है ना, इसलिए 0 में एक मिलाना, तो 1 आया। अभी कौन सा बच गया, विकथा, तो 4 से भाग देना, फिर भी वहां क्या आया, 0 आया, तो 1 में से 0 गया, 1 रह गया, 1 रह गया, इसलिए पहला वेद लेना, स्त्री कथा वाला लेना, यानी पहले प्रस्तार की अपेक्षा जो भेद होगा वो कैसा होगा, स्नेहवान निद्रालु श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत मायावी स्त्री कथा लापी। ये प्रथम प्रसार और द्वितीय प्रसार, इसमें डिफरेंस होता है, समझ में है ना बात, ये इसका तो हमने निकाला था 15 नंबर का, ये इसका 15 नंबर जुदा है और वो वाली बात 15 नंबर जुदा है। अभी हमको वो बताएंगे, ये आपका कथन है और आपका उसका नंबर निकालना है। अब वो भी उसके टेबल के बिना आपको निकालना है, गणित के द्वारा निकालना है, उसके बाद अभी यहाँ बताएंगे। अभी जो हमने निकाला ना, स्नेहवान निद्रालु श्रोत्र इंद्रिय का 15 नंबर का प्रथम प्रसार की अपेक्षा बताया था, अभी इसी को आपको गणित के द्वारा निकालना है। उसकी विधि जो अभी हमने श्लोक में पढ़ी थी उसी को बता रहे हैं। पहले में पहले एक अंक स्थापित करना, एक रूप यानी एक अंक को स्थापित करना, फिर क्या करना, अभी आगे के पिंड का जो प्रमाण है उसे गुणा करना, यानी ऊपर प्रमाद विकथा वाला लिखा था हमने, तो विकथा का प्रमाण 4 से गुणा करना, तो 4 × 4 हुए, तो ये स्त्री कथा लापिका। सो इसके पश्चात 3 भेद है, समझ में आती बात, 4 × 4 तो 1 आया ना, तो पहला भेद लेना, तो स्त्री कथा लापी ली। फिर से देखो, एक अंक को स्थापित करके आगे के पिंड का जो प्रमाण हो उससे गुणा करें, पिंड का 4 विकथा है तो 4 से गुणा किया तो 4 × 4 हुआ, तो पहला भेद लिया हमने, स्त्री कथा लापी है। उसके बाद क्योंकि 4 × 4 एक आया ना, लब्ध राशि 1 आ गई, इसके बाद नहीं नहीं सॉरी, आपको यहाँ नाम बताया है, पूरा नाम बताया आलाप का, आलाप का नाम क्या है देखो, स्नेहवान निद्रालु श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत मायावी और स्त्री कथालापी, ये आपको बताया है। तो स्त्री कथालापी तो आपको बता दिया है, एक अंक लिखना, विकथा वाला भेद है तो 4 से गुणा करना, 4 संख्या आई, और स्त्री कथालापी इसमें से पहले स्थान पर है, समझ में आई बात। तो उसके स्त्री कथालापी के बाद कितने भेद है 4 में से, 3 है, और 3 विकथा अनंकित यानी जिसको नहीं कहा है, ये उन्होंने यहाँ तो बातें सब बता दी है और हमको टोटल उसकी संख्या निकालनी है। तो स्त्री कथा लापे के बाद 3 रह जाते हैं। पहले में हम पहले एक अंक को लिखकर 4 से गुणा किया, 4 × 4 हो गए, तो उसके स्त्री कथा लापे के बाद 3 भेद है, तो अनंकित स्थान 3 है, उसको घटाना, 4 में से 3 गए, फिर 1 रह गया। अब फिर आगे वाला कषाय है, उसमें 4 होते हैं, 4 से गुणा करना, और हमको आलाप बताया था, कौन सा बताया था, मायावी बताया था, मायावी कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, तो उसमें से 3 माइनस करना, फिर 1 रह गया। देखो उसको घटाने पर 3 रहे, इसको इंद्रिय प्रमाद 5 से गुणा करने पर 15 हुए। सो यहाँ श्रोत्र इंद्रिय का ग्रहण है, वो अंतिम है, उसके बाद कोई नहीं है, इसलिए कुछ नहीं घटाना, तो 15 रह गए, तो ये 15 नंबर का आया, स्नेहवान निद्रालु वगैरह वगैरह, ये 15 नंबर का है। अब दूसरा उदाहरण लेके इसी को बताते हैं। अभी आपको लिख के रखो, स्नेहवान निद्रालु है, घ्राण इंद्रिय के विषयभूत वाला है, लोभी है और भक्त कथा लाती है। फिर से हम यहाँ आलाप लिख के रखेंगे, स्नेहवान निद्रालु, अभी इसको तो बताना ही, उसमें कुछ गणित में कुछ उसका प्रयोजन नहीं है, घ्राण इंद्रिय के वशीभूत है, लोभी है और भक्त कथा लाती है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, विकथा से, एक संख्या लिखना, उसको 4 से गुणा करना, 4 आए, भक्त 2 नंबर है, तो उसमें दो नंबर का है तो उसमें से दो माइनस करो। भक्त दूसरे स्थान पर है, इस चार में से माइनस दो, दो आ गए। अब ये दो को क्या करना, उसके बाद है कषाय, कषाय चार से गुणा करो। समझ में आती है बात? ये जो यहां जब मिली इसको चार कषायों से गुणा करो तो आठ आ गए। उसमें क्या बताया, लोभ बताया था, लोभ अंतिम वाला है, उसके बाद कोई स्थान नहीं है। जो बाद में स्थान होते हैं उनकी संख्या को माइनस करना होता है, तो आठ में से जीरो गए तो आठ ही आए। समझ में बात? भक्त का था दूसरे नंबर पर था, यहाँ तो चार होती है तो चार में से दो गए, दो रखे। अब इस दो को आगे चले, कषाय चार से गुणा करो, आठ आते हैं, परंतु ये लोग अंतिम स्थान है इसलिए जीरो माइनस करना तो आठ ही रह गया। अब इसके बाद कौन सा है, इंद्रिय वाला, तो आठ को पांच से गुणा करो, कितने आते हैं, चालीस आते हैं। और यहाँ कौन सा बताया आपको, घ्राण इंद्रिय की बात है, घ्राण इंद्रिय के बाद कितने इंद्रिय बच जाते हैं, दो, तो इसमें से दो माइनस करना पड़ेगा तो 38 रहे हो जाते हैं। तो ये 38 नंबर का आलाप होगा। स्नेह नहीं नहीं नहीं, आठ और दो ये आगे के लास्ट निकालने के लिए तरीका है, इसका कुछ मायना नहीं रखता, क्योंकि हमको ये सब बता दे, हमको अंतिम फिगर लानी है, वो अंतिम फिगर लाने के लिए गणित है। वैसे हमको यंत्र के द्वारा तो बहुत आसान हो जाता है ना? अड़तीस आ गए ना, 38 आ गए, वो नहीं कुछ नहीं, ये अंतिम फिगर, ये संख्या आ गई हमारी, 38 नंबर का आ गया। पहले हमने जो प्रस्तर बने थे ना ऊपर स्पर्श, उसमें 1 2 3 4 वैसा लिया था, तो वहां 38 नंबर का आपको जोड़ना है, 20 और 15। हाँ बोलो, हाँ शोभा बोलो, शोभा हेलो किया और कुछ नहीं बोली, सुनाई दे रहा है क्या?
ऐकूत नहीं है
मला, ही मी हेलो हेलो खूब वेळा बोलले, तुम्हाला ऐकूत नहीं है, फिर से लगा लो। चालू रखना है क्या? ये तो गणित द्वारा निकालना वैसे जरा कठिन पड़ता है, हमारा जो टेबल है ना उससे आसान है, पर यहाँ तो ये निकालने के तरीके बताए आपको। देखो अभी हमने 13 नंबर का पढ़ लिया, फिर से इसको पढ़ते हैं। 13 का अर्थ एक अंक को स्थापित करके आगे के पिंड का जो प्रमाण हो, जो हमें आलाप बताए ना, तो लास्ट वाला जो है उससे गुणा करे और लब्ध में से अनंकित को घटा दे। जैसे भक्त वाला कथा वाला देते, उसके बाद अनंकित दो है, दो को घटा दिया तो चार में से दो गए तो दो रह गए। ऐसा प्रथम पिंड के अंत तक करता जावे। हाँ हम 13 नंबर के गाथा का अर्थ दोबारा देख रहे हैं, वहां पर धवला पेज नंबर 46। एक अंक को स्थापित करके आगे के पिंड का जो प्रमाण हो उससे गुणा करे और लब्ध में से अनंकित को घटा दे, ऐसा यानी वो करते जाना हर बार, ऐसे प्रथम पिंड के अंत तक करता जावे, इस प्रकार उद्दिष्ट निकल आता है। हाँ ऊपर वो नष्ट था, ये उद्दिष्ट है विशेषार्थ। पूर्वोक्त सात गाथाओं में यह बतलाया गया है, जब अनेक पिंडों के अंतर्गत विशेष पदों के विकल्पों से भिन्न भिन्न भंग बनते हैं। अपना अभी विषय है उदय स्थानों का, और उसमें हमने अलग अलग भंग देखे थे। आपको याद है तिर्यंच गति की बात चल रही है, और उसमें हमने उदय स्थानों में उद्योत्स सहित वाले, रहित वाले वगैरह वगैरह अनेक भंग देखे थे। तो भंगों में अभी हमको नंबरिंग करना है या पर्टिकुलर भंग बताना है। 10 नंबर का भंग कौन सा है उसको बताना है, दोनों ओर से नष्ट या समुद्दिष्ट। तब उन सब भंगों की संख्या किस प्रकार निकाली जाए, ये टोटल संख्या कैसे, तो जितने हम विकल्प है उसके आपस में गुणा करते हैं, 2 × 2 × 6 × 6 वगैरह हमने किए थे। उस संख्या प्रमाण सब भंगों को क्रम से जानने के लिए, उनका क्रम जानने के लिए, ये विशिष्ट क्रम से उसको संख्या देंगे, किस किस प्रकार विस्तार किया जा सकता है, उस विस्तार से किस प्रकार भंगों में परिवर्तन होते हैं, किसी स्थान विशेष की क्रम संख्या मात्र के उल्लेख से, जैसे वो तो उसको क्रम संख्या बता दी, उस स्थानवर्ती विशेषों को कैसे जाना जा सकता है, यानी वो संख्या बताई आपको वो पूरा आलाप कथन करना है उसका, या विशेषों के नामोल्लेख से, यानी वो इसको आलाप कहते हैं, वो कौन सा वो भंग है पूरा बता देंगे, उसकी क्रम संख्या किस प्रकार जानी जा सकती है, ये सब इसमें बताया है। गाथा नंबर 7 में इन्हीं प्रक्रियाओं के 5 नामों का उल्लेख है। भंगों के प्रमाण को संख्या, उस संख्या प्रमाण भंग प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रस्तार, उत्तरोत्तर एक एक विकल्प के नाम परिवर्तन को परिवर्तन, उसी को अक्ष परिवर्तन भी कहते हैं, क्रमिक संख्या के उल्लेख से विकल्प के विशेषों को जानने के प्रकार को नष्ट, और विकल्प विशेष के नामोल्लेख से, आलाप बता दिया कथन कर दिया, उसकी क्रमिक संख्या को जानने के प्रकार को समुद्दिष्ट कहा है। गाथा नंबर 8 भंगों की संपूर्ण संख्या निकालने का प्रकार बतलाया गया है, जिसका उपयोग प्रकृत में पंचेंद्रिय जीवों के, पंचेंद्रियों में बहुत सारे भंग है ना, सुभग दुर्भग, आदेय अनादेय, यशस कीर्ति अयशस कीर्ति, 6 संस्थान और 6 सहनन, इनके विकल्पों द्वारा उत्पन्न उदय स्थानों की भंग संख्या निकालने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए प्रक्रिया यह है कि प्रकृत पिंड प्रमाणों की संख्याओं को क्रमशः रखकर परस्पर गुणा कर दो, जिससे जैसे सुभग दुर्भग के लिए 2 लिखे, आदे अनादे के 2 लिखे, यशस कीर्ति अयशस कीर्ति के 2 लिखे, 6 संस्थानों के लिए 6 और 6 सहनन के 6, इसका आपस में गुणा करने पर 288 विकल्प आ जाते हैं, यानी इतने उसमें भंग होते हैं। अब 47 नंबर पेज, गाथा नंबर 9 और 10 में बतलाई गई 2 भिन्न भिन्न प्रकार की प्रस्तार प्रक्रिया का स्पष्टीकरण अक्ष परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है, जो निम्न प्रकार है। ये जो प्रथम प्रस्तार और द्वितीय प्रस्तार, ऐसे उसके 2 भेद होते हैं, जैसे हमने प्रमादों में देखा था, स्नेहवान निद्रालु से शुरुआत करना कि विकथा से शुरुआत करना, उसके अनुसार उसका प्रस्तार किस तरह से लिखा जाता है उसकी बात अलग अलग होती है। गाथा नंबर 11 में जो अक्ष परिवर्तन का क्रम बतलाया गया है, वह द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा गाथा नंबर 10 के अनुसार संभव है। प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा अक्ष परिवर्तन की निरूपक गाथा यहाँ नहीं दी गई है। यह गाथा गोमरसार जीव कांड के प्रमाद प्रकरण में इस प्रकार पाई जाती है, जो हमने आपको वहां सुनाई थी, उन्होंने वहां 39 नंबर लिखा है, परंतु ये पदमखो अंतगदो जो लिखा था ना, यहाँ 11 नंबर की जो यहाँ गया है वहाँ जीव कांड में 39 नंबर है। और वहाँ जो बात बताना चाहते हैं तदियखो अंतगतो जो वहाँ लिखी है उसमें उन्होंने जीवकांड की 39 लिखी है, वो गाथा 40 होनी चाहिए। जीवकांड में गाथा नंबर 40 है, वो 39 के बदले 40 करो। उसमें किया हुआ है क्या 40? हाँ करो। ये प्रथम प्रस्तार है एक्चुअली। हाँ देखो पढ़ेंगे इसको। तदियखो अंतगदो आदिगदे संकमेदि विदियखो दोन्नि विगंतूणंतम आदिगदे संकमेदि पड़मखो। यानी वो पहले किसको वो हमने देखा था ना स्पर्शन इंद्रिय फिर रसना इंद्रिय इस तरह से उसका परिवर्तन किया था। यहाँ तृतीय अक्ष हमारे यहाँ विकथा वाला पहला अक्ष था, कषाय वाला द्वितीय था और तृतीय वाला तो इंद्रिय वाला था। तृतीय अक्ष जब आलाप क्रम से अपने अंत तक जाकर फिर से लौटकर एक साथ अपने प्रथम स्थान को प्राप्त हो जाता है तब द्वितीय अक्ष बदलकर दूसरे स्थान को प्राप्त होता है। यानी पहले पांचों इंद्रियों का क्रम से लास्ट में चले जाते हैं तब क्रोध से मान पर आ जाता है। इस प्रकार दोनों ही अक्ष अंत को प्राप्त होकर यानी फिर मान पर फिर पहला अक्ष अंत पे ले जाना, फिर माया पर सभी पांचों इंद्रिय लगाना, फिर लोक पर। अब ये दोनों अक्ष हो गए, वो फिर से लौट कर जब अपने अपने प्रथम स्थान को प्राप्त होते हैं यानी जो स्पर्शन इंद्रिय और यहाँ क्रोध पर फिर प्राप्त हुए तब प्रथम अक्ष प्रथम स्थान को छोड़कर द्वितीय स्थान पर पहुंचता है। यानी तब हम स्त्री कथा को छोड़कर भक्त कथा पर चले जाते हैं। समझ में आई बात ये? इसके अनुसार प्रकृति में आलाप भेदों का क्रम निम्न प्रकार होगा। वो तो हमने प्रमाद पर देखे, अब हमको यहाँ हमारा विषय तो प्रकृतियों का है। तभी 47 पेज पर ये जो नीचे दिखा है इसके अनुसार प्रकृति में आलाप भेदों का क्रम निम्न प्रकार होगा। ये सब विशेषार्थ के अंतर्गत ही वो समझा रहे हैं सब। तो ये कैसे लिखना है वो वर्टिकल कॉलम उन्होंने की है। ये कैसा आलाप लिखा उन्होंने? इसके अनुसार प्रकृति में आलाप भेदों का क्रम निम्न प्रकार होगा। हाँ अच्छा, वो तो पूरा उसमें बता रहे पहला क्रम दूसरा क्रम इस तरह से। तो पहला क्रम क्या बताए? सुभग आदेय यशस कीर्ति समचतुर संस्थान और वज्रषभ नाराज सहनन। ये प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा बात हो रही है। ये आपको उसमें याद करो प्रथम प्रस्तार कैसा किया था, स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय का वक्र ऊपर से हम कहते आए और लिखते समय नीचे से लिखा। तो ऐसे ही यहाँ पर सुभगों को आदेय यशस कीर्ति समच सुरस्त्र वगैरह लिखा और वज्रषभ वज्रनाराज नाराज इनको क्रम से चेंज कर रहे हैं। तभी हम आपको जो प्रमाद की बात समझाई थी ना, टेबल नहीं डायरेक्ट नहीं, वो प्रस्तार कहाँ लिखा है उन्होंने? प्रथम प्रस्तार तो एक्चुअली 50 पेज पर है, ये द्वितीय होना चाहिए। ये गलत है, वो हमारे में भी लिखा है, वो हमने करेक्शन किया है। वो प्रथम लिखा वहाँ 49 पेज निकालो, अभी आपने बताया ही तो उसमें करेक्शन कर लेते हैं। वह प्रथम प्रस्तार लिखा उसके बदले द्वितीय प्रस्तार लिखो, और गाथा 20 के बदले गाथा 10-11 लिखो। लिखा और आगे का भी करेक्शन कर लो। 50 पेज पर प्रथम प्रसार बराबर लिखा है, ब्रैकेट में गाथा 21 लिखा है, वहां गाथा 9 लिखो। पचास पेज पर प्रथम प्रसार लिखा है बराबर है, ब्रैकेट में गाथा 9 लिखो और उसी में करेक्शन है नीचे के टेबल में, जहां नीचे से ऊपर पढ़ो सुभग जहां लिखा है ना वहां 0 होना चाहिए, क्योंकि पहले कॉलम में हमें 0 लिखते हैं ना। हाँ, ये इस पर हम बाद में आते हैं। अभी ये जो प्रथम प्रस्तार है उसमें हमने ऊपर के कॉलम में सहनन को लिखा, हम कहते हैं सुभग आदेय यशस कीर्ति वगैरह वगैरह। तो ये नंबर 1 कैसा लिखा, सुभग आदेय यशस की समचस्र, और हम चेंजेस कहाँ करेंगे, असहनन में करेंगे, यानी बाकी सबको पहला नंबर रखेंगे और सहनन में सब 6 सहनन को चेंज करेंगे। देखो सुभग पर आदेय को भी फिक्स रखा, यशस कीर्ति को भी फिक्स रखा, समचतुरस्र को भी फिक्स रखा और सहनन 6 ले लिए। 6 के बाद क्या होगा, अभी समचतुरस्र के बदले निग्रोध परिमंडल आ जाएगा। 7 नंबर पर निग्रोध परिमंडल लेना, उसके साथ फिर वज्रषभ नाराज वज्र नाराज नाराज वगैरह वगैरह ले लेना। वज्र वज्र नाराज के बदले वज्र वृषभ नाराज लिखना, निग्रोध के आगे वज्र वृ लिखना, क्योंकि वज्र नाराज उन्होंने 2 बार लिखा है, पहला जो लिखा है उसमें वज्र वृषभ नाराज, वो लास्ट टाइम हमने किया था करेक्शन उसमें, यानी वो 12 तक तो निग्रोध परिमंडल पर हो गए। तो 13 नंबर किसका होगा ब्रह्मा, नहीं हाँ देखो समचतुरस्र पर 6, फिर 7 से 12 तक निग्रोध परिमंडल, 13 से 18 स्वाति, फिर कुब्जक, फिर वामन, हुंडक, सबको ले लेना, चौक, यानी 6 6 36 तो यहीं पर चले जाएंगे। जब ये पूरे हो जाएंगे फिर यश कीर्ति को, नहीं नहीं देखो पहले क्या है, हमने सुभग आदे यश कीर्ति कायम रखे, समचतुरस्र कायम रखा और 6 लिए, समचतुरस्र के बाद निग्रोध परिमंडल पर 6 6 पर 6 6 लगाए। अब कहाँ चेंज करना, यश कीर्ति के बदले अयश पर लेना, जैसे यश कीर्ति पर 36 लगाए और यश पर भी 36 लगाएंगे, 72 तो यहाँ हो जाएंगे, समझ में आ रही बात। 73 नंबर को क्या लेना, आदेय के बदले अनादेय, तो आदेय पर 72 लगे, अनादेय पर भी 72 लगा लो। हाँ 7 4 7 7 14 हाँ 144 हो गए। 145 नंबर पर दुर्भग पर, तो 144 इसके और 144 इसके, 288 हो गए ना। कहाँ अक्ष परावर्तन करना, वो तो जो यहाँ लास्ट वाला है सहनन वाला उसमें चेंज करना। फिर पहला सहनन संस्थान लिया था, सेकंड संस्थान पर 6 लगाना, तीसरे संस्थान पर 6 लगाना, इस तरह से करना है आगे। अभी पढ़ेंगे इसको। इस प्रकार जैसे समचतुर सहित 6 भंग बने हैं, वैसे ही निग्रोध सहित 6 भंग बनेंगे और फिर 4 संस्थानों के भी क्रमशः 6 6 भंग होंगे, जिनका संयोग जिनका योग होगा 36। अभी हमने इसको देखा था ना, फिर यही 36 भंग यश अयशस कीर्ति के साथ होंगे, तो 36 36 72 हो जाएगी। फिर अनादेय के यश कीर्ति के साथ 36 और अयश कीर्ति के साथ 36 भंग होकर 72 भंग हो जाते हैं। यानी आदेय के भी 72 और अनादेय के भी 72 इस तरह से। पश्चात दुर्भग को लेकर 36 आदेय यश कीर्ति सहित, 36 आदेय अयश कीर्ति सहित, 36 अनादेय यश कीर्ति सहित और 36 अनादेय अयश कीर्ति सहित, ऐसे 144 भंग होते हैं। हमने सब गिने थे, अभी इसको ही रिपीट देख रहे हैं। इस प्रकार इन सबका योग 36 और 36 और 72 और 144 288 होता है। ले लिया ना, उन्होंने अलग टाइप से किया था, हमने अलग टाइप से आपको बताया। अब 48 पृष्ठ पर आना। द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा आलाप भेदों का क्रम निम्न प्रकार है। ये गाथा 11 के अनुसार उन्होंने बताया है। यहाँ पर अभी उसके उसमें क्या लिखना है, अभी वहां चेंज कहाँ हो जाएगा, सुभग दुर्भग पहले नीचे के सब कॉमन कायम रखेंगे और फिर पहला चेंज कहाँ होगा, सुभग से दुर्भग पर चला जाएगा। हाँ, दोनों हो जाएंगे, फिर आदेय पर 2 लगे, फिर अनादेय पर 2 लगेंगे, तो दोनों के 2 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये 4 यश कीर्ति पर लगे थे, ऐसे ही 4 अयश कीर्ति पर लगेंगे, 8 हो जाएंगे। फिर समचतुर संस्थान पर 8 लगे, नगरोत पर 8, ऐसे 6 पर 8 लगाएंगे, तो 6 पर 8 लगाएंगे तो 48 हो जाएंगे इसमें। उसके बाद ये 48 वज्रवृषभ पर हो गए, ऐसे ही 48 वज्र नाराज नाराज पर हो जाएंगे, यानी 48 गुना 6 हो जाएंगे, तो टोटल 288 हो जाते हैं। समझ में आई बात, उतनी टोटल होगी। पहला प्रस्तार हो या दूसरा हो, उसका नंबरिंग अलग होगा। देखो इसके नीचे लिखते, देखो इस प्रकार जैसे यहाँ आदेय सहित 2, ये द्वितीय प्रस्तार है ना, आदेय सहित 2, यानी उसको सुभग दुर्भग को सबके टॉप में रखना। जब हम गुड़ कोटा गुड़ यंत्र करेंगे तो उसको टॉप में लिखेंगे, ये द्वितीय प्रस्तार है। आदेय सहित 2, अनादेय सहित 2, फिर अयश कीर्ति आदेय सहित 2 और अयश कीर्ति अनादेय सहित 2, ऐसे 8 भंग बने हैं। वैसे ही न्यग्रोध यश कीर्ति आदेय सहित 2, न्यग्रोध यश कीर्ति अनादेय सहित 2, न्यग्रोध अयश कीर्ति आदेय सहित 2, न्यग्रोध अयश कीर्ति अनादेय सहित 2, ऐसे 8 भंग बनेंगे। और फिर शेष 4 संस्थानों के भी क्रमशः 8 8 भंग होकर 6 संस्थानों के 48 भंग हो गए। अभी हमने देखे थे जिस प्रकार ये 48 भंग प्रथम सहनन सहित हुए हैं, उसी प्रकार शेष 5 सहननों के भी क्रमशः 48 48 भंग होकर सब भंगों का योग 48 × 6 288 हो जाएगा। अब कहते गाथा नंबर 12 में क्रमिक संख्या पर से विवक्षित भंग जानने की विधि बतलाई गई है। उदाहरणार्थ हमें यह जानना है कि उक्त 288 भंगों में से 145वां भंग कौन सा होगा। तो हमने वो भाग देना वगैरह बात देखी थी ना। अब हमें 145 को सबसे पहले प्रथम पिंडमान 2 से भाजित करना, ये द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा बात की, जिससे लब्ध बहत्तर आए और शेष बचा 1। अतएव प्रथम स्थान में सुभग है, फिर लब्ध में 1 मिलाना, 72 में 1 मिला दो, 73 आ जाएगी। उसको दूसरे पिंड प्रमाण 2 का भाग देने से लब्ध 36 आए और शेष बचा 1। इससे जाना गया कि दूसरे स्थान में आदेय है, सुभग और आदेय लिया। फिर लब्ध में एक मिलाकर तीसरे पिंडमान दो का भाग देने से 36 में एक मिला है 37 हो गए, उसको दो से भाग दिया 18 और शेष रहा एक, इससे जाना जाता है कि तीसरे स्थान में यश कीर्ति है। फिर लब्ध में एक मिलाकर, मिलकर नहीं मिलाकर, चौथे पिंडमान छह का भाग देने से लब्ध आए तीन, क्योंकि एक मिला था ना, 18 में एक मिला तो 19 हो गए, छह का भाग दिया तो चैत्रिक 18, एक बचा, इससे जाना जाता है कि चौथे स्थान में समचतुर्थ संस्थान है। फिर लब्ध में एक मिलाने पर अंतिम पिंडमान छह का भाग न जाकर तीन आए थे ना वहां पर, और तीन में एक मिलाया तो चार रह गए, चार को छह का भाग नहीं जाता, इसलिए 600 आया था ना, साइत्रिक 18, 19 थे, 19 को छह का भाग दिया था, साइत्रिक 18 हो गए, 18 में एक शेष बचा था और एक वहां तीन लब्ध आए थे, तो तीन में एक मिलाना तो चार हो गए, और चार को छह का भाग नहीं जाता तो जीरो आ गए, तो चार ही बचते हैं। तो चौथी प्रकृति अर्धनाराज समझना, अतएव 145वां भंग सुभग आदेय यश कीर्ति समचर्ष संस्थान व अर्धनाराज सहनन प्रकृतियों वाला होगा। समझ में आई बात ये? ऐसे भी आपके ये सामने वाला टेबल है ना, उसमें 145 की टोटल करो, कैसा निकालता है निकालो। आप प्रस्तार आपके सामने, द्वितीय प्रस्तार आपके सामने है, वो द्वितीय प्रस्तार ही है, वो इससे कंफर्म होता है। द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा ही अभी हमने ये बात पढ़ी थी, और आपके सामने वो टेबल भी है। अब उसमें 145 टोटल हो जाए ऐसे आप उसकी टोटल कर दो। हाँ मनीषा बहन, एक सौ चवालीस ले लो, पहला वर एक, ऊपर एक सुभग वाला एक मिला दो। हाँ तो सुभग आधे यशस के दिस, हाँ अर्धनाराज वाला है ना, समझ में है ना कैसे करना। अब आते हैं पेज नंबर 49 पर, गाथा नंबर 13 में विकल्प के नामोल्लेख पर से उसकी क्रमिक संख्या जानने की विधि बतलाई है। उदाहरणार्थ हम जानना चाहते हैं, अभी यहां उन्होंने उदाहरण दिया है कि दुर्भग अनादेय अयशस कीर्ति न्यग्रोध परिमंडल संस्थान और कीलक शरीर सहनन कौन से नंबर के भंग में आवेंगे। देख उन्होंने आलाप बता दिया, अभी क्या करना, पहले में पहले एक अंक को स्थापित करना, अंतिम पिंडमान कौन सा था, सहनन वाला, तो छह से गुणा करना, साय किस्सा आ गया। अभी उन्होंने सहनन कौन सा नंबर बताया था, यहाँ कीलक शरीर सहनन बता दिया है, कीलक सहनन, तो उसके बाद हुंडक आता है, तो अनंकित कितने हैं, एक है। समझ में आती है बात? देखो पहले में पहले एक अंक स्थापित करना, पांचवा आया तो उसके बाद कितने रह गए, वो माइनस करो, हाँ तो छह में से एक माइनस करो, पांच आ गए। यहां तक समझ में? अभी पांच बचे, उसके आगे का पिंडमान है संस्थान, संस्थान कितने होते हैं, छह, तो छह से गुणा करो, पांच गुना छह 30 आ जाएंगे, अब वहां का कौन सा बताया उन्होंने? निग्रोध परिमंडल बताइए। निग्रोध परिमंडल दूसरा न है, दूसरे के बाद कितने रह जाते हैं? चार। तो 30 में से 4 माइनस करो, 26 आ गए। समझ में आ रहे हैं क्या बात? अभी उसके बाद का पिंडमान, अभी कौन सा बताया उन्होंने? निग्रोध परिमंडल अयशकीर्ति बताया है। तो पहले में पहले 2 से गुणा करना, 26 को 2 से गुणा करना, 52 आ गए। यशकीर्ति से के यश के बाद कोई नहीं है, तो उसमें से कुछ नहीं माइनस करना। समझ में आती बात? दूसरी है ना प्रकृति, इसलिए 52 में से कुछ घटाना नहीं है, इसलिए यहां 52 ही रह गया। अब उसके आगे वाली प्रकृति कौन से? यश कीर्ति अयश बताया ना, उसके पहले क्या लिखा है उन्होंने? अनादेय, यानी वहां आधे अनादे वाले 2 प्रकृति होती है, इसलिए 2 से गुणा करना, 52 दुनी 104 आ जाएगी। वो भी अनादे है, उसके बाद में कुछ नहीं है, इसलिए 0 माइनस करना, 104 ही रह गए। अभी फिर पिंडमान प्रकृति कौन सी? अभी पहला कौन सा बताया उन्होंने? दुर्भग बताया है। तो 104 को पहले 2 से गुणा करो, तो 208 आ गए। उसमें से दुर्भग का नाम लिया, इसलिए कुछ नहीं घटाना, तो 208 ही रह गए। तो ये कौन सी है? तो 208 नंबर की है। अब ये 208 नंबर इसमें ढूंढ निकालो। देखो 192, 192 में निग्रोध वाले 8 मिला दो, 200 हो जाएगी, और ऊपर के लास्ट मिला दो, 208 आ गए। बराबर है ना? अभी सब कोई प्रकृति गई नहीं ना इधर उधर। इसलिए हमने यहाँ जब प्रथम का द्वितीय किया है वो बराबर है, द्वितीय प्रसार होना चाहिए, और गाथा 10 और 11 की बात है यहाँ पर। ये हो गया टेबल। अभी टेबल कैसे बताने, वो प्रसार है ना, गुड़ यंत्र कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा था। जैसे द्वितीय प्रसार है, द्वितीय प्रसार में कथन सुभग दुर्भग से होता है, तो उसको ऊपर के कॉलम में रखना। सुबह को 1 नंबर, दुर्भग को 2 नंबर लिया, फिर आधे अनादे लिख कर आधे को 0 देना, ऊपर दुर्भग को लास्ट कॉलम में 2 है तो यहाँ 2 लिखना, यशकीर्ति को 0 लिखना, और ऊपर के लास्ट दोनों कॉलम की टोटल 4 यहाँ लिखना, और यशकीर्ति के यहाँ। फिर नीचे समचतुर्थ वगैरह क्रम से 6 संस्थान लिखना, पहले कॉलम में 0, ऊपर की टोटल लास्ट कॉलम की 8 होती है, फिर 8-8 से बढ़ते हुए लिखेंगे हर संस्थान को। निग्रोध के लिए 8, स्वाति के लिए 16, कुब्जक के लिए 24, वामन के 32, उंडक 40। अब नीचे 6 सहनन लिखना, पहले कॉलम में 0 लिखना, आगे लास्ट वालों की टोटल करना, हुंडक के 40, अयश के 4, अनादे के 2 और दुर्भग के 2, ये सब मिलकर 48 होते हैं। वो पहले वज्रनाराज में 48 लिखो, फिर 48-48 से बढ़ते हुए लिखना आगे, नाराज में 96, अर्धनाराज में 144, किलित में 192 और संप्राप्ति का 240। एक गजब का उन्होंने जिसको कहेंगे ना, ये गुड़ यंत्र की बात तो गजब की है। ये सब द्वितीय प्रसार हुआ, जब हम सुभग दुर्भग से चालू करते कथन तब ये बात होती है। पहला प्रस्तार है नहीं, ये सहनन को ऊपर रखेंगे, वो पहला प्रस्तार हुआ। अब वो लिखिए पेज नंबर 50 पर बात। देखो प्रथम प्रस्तार और गाथा 9 की है अपेक्षा, भंगों के जानने का यंत्र जिसको गुड़ यंत्र कहते, ऊपर 6 सहनन लिख दिए और उसमें क्रम से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर लिखे, फिर संस्थान लिखे क्रम से, पहले संस्थान के लिए 0 लिखना और वो असंप्राप्ति का नंबर 6 था तो यहाँ निग्रोध को 6 नंबर लिखना, फिर 6-6 से बढ़ते हुए लिखना, 6, 12, 18, 24, 30। उसके नीचे यश अयश का कॉलम लिखना, पहले कॉलम में 0, दूसरे में ऊपर के लास्ट की टोटल 6 और 30, 36 यहाँ लिखना, फिर नीचे आधे अनादे लिखकर ऊपर 36 और 36 72 उसमें लिख देना अनादे के कॉलम में, और लास्ट में सुभग यहाँ जीरो होना चाहिए, सुभग के लिए जीरो और दुर्भग के लिए 144। और इस यंत्र के द्वारा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर संख्या बताते हैं तो आपको उसका आलाप बता सकते हैं जिसको हम नष्ट कहेंगे, या आलाप बताए तो संख्या निकाल सकते हैं उसको उद्दिष्ट कहते हैं। देखो ये बात कहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ से वो 7 नंबर की गाथा आई थी, ये भंगों के लिए ये सब उसके नंबरिंग वगैरह कौन सा भंग है क्या ये जानने के लिए ये सब बातें बताई उन्होंने। ये बात जरा 44 पेज निकालो, पंचेंद्रिय तीर्यंचों के उदय स्थानों की बात चल रही थी, याद है क्या, भूल गए? हाँ, पहले हमने उद्योत से रहित जीवों के बात देखी थी, नाम कर्मों के उदय स्थान याद है ना, एक विग्रह गति में होता है, एक मिश्र शरीर काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल और भाषा पर्याप्ति काल। विग्रह गति में 21 प्रकृतियां होती है, अभी पंचेंद्रिय तीर्यंच है, मिश्र काल में कितने हो गए, 26 होती है, 26 होती है ना, क्योंकि उसमें नया क्या चलोगे, कानू पूर्वी का उदय मिट गया, और कहाँ किसका उदय शुरू हुआ, तीर्यंच पंचेंद्रिय औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग, फिर सहनन एक होगा, संस्थान एक होगा, और फिर उस उपघात होगा, उद्योत अभी नहीं, और प्रत्येक शरीर होगा, ये 6 का शुरुआत होती है। शरीर पर्याप्ति होने पर वहां पर यहाँ उपघात हो ना, वहां परघात विहाय गति, उदय से उद्योत से रहित वालों के लिए 2 ही, 26 का 28 हो जाता है, फिर 28 का 29 और 29 का 30, उच्छ्वास कर्म और स्वर कर्म, ये तो हो गई उसकी बात। उद्योत सहित वालों के क्या होगी बात, पहला 21, फिर 26, फिर शरीर पर्याप्ति होने पर 29 होती है डायरेक्ट, परघात विहाय गति और उद्योत, फिर उच्छ्वास और फिर स्वर, इस तरह से उसमें होते हैं। अब ये जो 21 वालों में तो उसके भंग बता चुके थे, 26 वालों में वो संस्थान सहनन वो सब अनेक बातें चालू हो जाती, तो उसमें वो भंग भी ज्यादा हो जाते। पहले तो आदे अनादे यश यश सुभग दुर्भग ये भंग तो थे, पंचेंद्रिय था तो वो भंग थे उसके, यहाँ शरीर धारण करने के समय संस्थान सहनन वाले भी भंग मिल जाते, तो वहां हमने 288 भंग देखे। तो देखो पेज नंबर 44 निकालो, वो सेकंड लाइन में लिखा है ना, उद्योत के उदय से रहित पंचेंद्रिय तीर्यंच के, उसमें 21 प्रकृतियों वाला जो स्थान है उसमें ऑप्शनल क्या थे, पर्याप्त अपर्याप्त सुभग दुर्भग आदे अनादे यश कीर्ति और अयश कीर्ति, यानी पर्याप्त के साथ 8 भंग हो गए और अपर्याप्त के साथ 1 ही भंग होगा, क्योंकि अपर्याप्त नाम कर्म वाले के दुर्भग ही होगा अनादेय ही होगा इस तरह से, ऐश कीर्ति, इसलिए वहां 9 भंग हुए थे। अब नीचे का पैराग्राफ, जब शरीर ग्रहण करने के समय जो 26 वाला स्थान है तो वहां कितने भंग होते हैं, तो वहां पर अभी ये शरीर पर्याप्ति किसके होगी, पर्याप्तों के होगी, इसलिए पर्याप्त अपर्याप्त वाले भेद यहां नहीं होंगे, तो सुभग दुर्भग होगा, आदे अनादे होगा, यश कीर्ति ऐश कीर्ति होगा, 6 संस्थान और 6 सहनन होंगे, ये 288 भंग जो अभी हमने पहला प्रस्तार दूसरा प्रस्तार वगैरह जो देखा ना, इतनी चर्चा उसके लिए की। मैंने पर्याप्त के उदय से ही इतने सब उसमें भंग लगाए, 288, और अपर्याप्त के वाले के सारे अशुभ भी प्रकृतियां हैं उसके लिए, इसलिए उसका एक भंग भी इसी में जोड़ दिया, ये मिश्र शरीर वाला उसके है, वो शरीर पर्याप्ति वाले आगे के उसके नहीं हो गए, इसलिए ना टोटल भंगा 289 है। इसके लिए उन्होंने भंगों की वो लाने की विधि वगैरह सब, हम बीच वाला जो सारा विषय है उसके बारे में था। हमारा विषय क्या चल रहा था, विग्रह गति के 21 में भंग हमने 9 देखे और 26 में भंग 289 देखे। अब इसके आगे का विषय 50 पेज पर है, क्योंकि हम बीच में ही दूसरा विषय लिया था ना, तो हमारी कंटिन्यूटी वो उद्योत से रहित वाले पंचेंद्रियों के उदय स्थानों की बात यहाँ चल रही थी। अब यहाँ एक पैराग्राफ पढ़ते तो हमें कंटिन्यूटी मिलेगी, फिर हम कल बाकी विषय लेंगे। देखो, शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करने वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच के, ये उद्योत रहित की बात ही हो रही है अभी भी, पूर्वोक्त 26 प्रकृतियों वाले उदय स्थान में से अपर्याप्त को निकालकर, अपर्याप्तों के शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, प्रघात और विहाय गति में से कोई एक इन दो प्रकृतियों के मिला देने पर 28 प्रकृतिक उदय स्थान होता है। वो अपर्याप्त को निकालना है ना, उसके बदले पर्याप्त को रखना है, इसलिए 26 के बाद दो ही मिलते हैं उसमें। यहाँ भंग कौन कौन से होते हैं, सुभग दुर्भग, क्योंकि ये सारे पर्याप्त ही है, आदेय अनादेय, यश कीर्ति अयश कीर्ति, पहले यश कीर्ति लिखना बाद में अयश लिखना, क्योंकि इसी क्रम से हम भंगों को नाम नंबरिंग करते हैं, कॉमा लगा लो। 6 संस्थान, पहला यश बाद में अयश, हाँ हमने करेक्शन किया था लास्ट टाइम, बाद में अयश। 6 संस्थान, 6 सहनन तथा, देखो एक और बढ़ गया इसमें, प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति, इन विकल्पों के भेद से 576 भंग होते हैं। 288 थे उससे डबल हो गए। अब हम यही रुकेंगे। कौन सी गाथा, यहाँ कहाँ गाथा है, कहाँ है गाथा आपकी? ये हमने पढ़ ली बीच वाला सारा विषय, और उसके बाद एक पैराग्राफ इसलिए लिया कि वो कंटिन्यूटी मिल जाए, कल फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देव।